प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
आज हमारे सप्ताह के श्रोता के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं, आपका होस्ट एंड दोस्त अनीश श्रीवास। तो श्रोताओं, सप्ताह के श्रोता के आज के इस क्रम में हमारे आज के सप्ताह के श्रोता कौन है, ये जानने की जिज्ञासा हर हफ्ते आप सभी को बनी रहती है। और जैसा कि हम हर बार एक सस्पेंस के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सस्पेंस छोटी सी बात के साथ रहती है कि हमारे आज के सप्ताह के श्रोता है आखिर कौन। तो अब ये सस्पेंस या तो हम खोलें या फिर हमारे सप्ताह के जो श्रोता है सीधा वो खोलें कि भाई आज के सप्ताह के श्रोता वो है आखिर कौन। तो चलिए मैं एक छोटा सा बात उनके संदर्भ में कहना चाहूंगा। हमारे आज के जो सप्ताह के श्रोता है वो है महाराष्ट्र से। जी हाँ, और महाराष्ट्र के हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे अखबार रेडियो से जुड़े हुए हैं। तो महाराष्ट्र के वो कौन से श्रोता है, तो एक और आप बात जोड़ देता हूँ कि वो है नासिक से। अब कुछ कुछ श्रोता साथी समझ रहे होंगे कि नासिक महाराष्ट्र, तो कहीं वो हमारे विनायक धनेश्वर जी तो नहीं है। हाँ, बहुत से श्रोता साथी समझ गए होंगे, क्योंकि नासिक महाराष्ट्र की जहां बात आती है श्रोताओं के संदर्भ में, तो हमारे अल्फा रेडियो के बहुत से श्रोता समझ जाते हैं कि विनायक धनेश्वर जी हैं हमारे आज के सप्ताह के श्रोता। तो चलिए, मैंने परिचय करा तो दिया है सिर्फ नाम से, लेकिन बाकी आगे की सारी परिचर्चा या बातचीत जो है हम सीधे उन्हीं से करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है विनायक जी आज के हमारे इस कार्यक्रम में।
आदरणीय अनिश श्रीवास जी और रेडियो अर्पा के सभी टीम को मेरा प्रथम प्यार भरा आदरणीय नमस्कार। कल के नव हिंदू वर्ष के भी सबको मंगल शुभकामना, और खास करके अर्पा रेडियो ने जो तीसरा अपना स्थापना दिन बनाया, अर्पा रेडियो के पूरे खुशी के माहौल में हम डूब चुके हैं सर।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और इस धन्यवाद के साथ ही आपको बहुत बहुत बधाई, आपको भी नववर्ष की और नवरात्रि पर्व की भी। तो सप्ताह के श्रोता, सुनने वाले सभी श्रोता जान गए कि आज के हमारे जो सप्ताह के श्रोता है नासिक महाराष्ट्र के हमारे नियमित श्रोता विनायक धनेश्वर जी। तो विनायक जी, पुनः स्वागत के साथ, अब हम आपका ना जो संपूर्ण परिचय जानना चाहेंगे विनायक जी।
सर, मैं विनायक धनेश्वर, मैं नासिक महाराष्ट्र में डिफेंस सर्विस में था।
जी जी जी।
और अभी ऑफिस सुपरिटेंडेंट पद से सेवानिवृत्त होकर मुझे 3 साल हो गए।
जी जी।
मेरे मेरे परिवार में मुझे 2 लड़कियां और 1 लड़का है। और मेरी मिसेस विजय धनेश्वर कॉलेज में प्राध्यापक पद पर कार्यरत है। मेरी दोनों लड़कियों की शादी हो चुकी है, दोनों सर्विस करते हैं, दोनों वेल सेटल है। मेरा लड़का सीए सर्विस धनेश्वर नासिक के सरस्वत बैंक में डिप्यूटी मैनेजर पद पर कार्यरत है, वो दोनों ऑफिस में।
वाह वाह वाह, मतलब पूरा भरा पूरा परिवार, साथ ही साथ पढ़ा लिखा परिवार, और सभी जो है अच्छे अच्छे पद पर पदस्थ हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा ये पूरा परिचय जान करके मितान जी। तो हम आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपकी संपूर्ण पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई।
सर, मैं वैसे एमकॉम हूँ।
जी जी।
डिप्लोमा इन लेबर लॉ में किया था मैंने।
अच्छा जी, वाह।
तो सोशल एक्टिविटी और सोशल वेलफेयर में ज्यादा रहता हूँ। और संगीत से नाता मेरा 1969 से रहा है, जो आज तक साथ है बिल्कुल।
तो संगीत से नाता है जैसे आप बता रहे हैं, तो संगीत के किस विधा से या किस फील्ड से आपका नाता है, ये भी विस्तार से बताएं हमें।
संगीत से नाता मतलब बचपन से रहा है मेरा, सबसे पहला रेडियो साथी ये रेडियो सीलोन रहा है। बाद में एक एक उसमें ऐड होते हुए सबसे अभी कम्युनिटी रेडियो का जो अर्पा रेडियो है।
जी जी।
उससे एक हर दिन का रिश्ता ही हो गया है बिल्कुल।
जी जी, वो तो हम देखते ही हैं, चाहे वो पोस्ट के माध्यम से हो वो बातचीत, या फिर कार्यक्रम के संदर्भ में आपकी फरमाइश लगातार जो आने की बात है उससे दिखता ही है। जी जी, बहुत ही अच्छा लगा।
जब से सर मेरे जिंदगी में रेडियो अर्पा आ गया।
जी जी।
और रेडियो संगीत से जो संगीत का होता है ना, सा रे ग म,
जी जी,
तो मुझे वो हर दिन गुदगुदा करता है और मेरे रेडियो अर्पा सारे गम को भुला देता है।
वाह वाह वाह, सारे गम को भुला
देता है। यही रेडियो अर्पा की ताकत है सर।
तुकबंदी आपने जो कि बहुत ही अच्छा लगा मितान जी, तुकबंदी वगैरह भी करते हैं लग रहा है आप। चलिए बढ़िया। तो चलिए, प्राथमिक परिचय के साथ ही समय हो गया है मितान जी की, आपके पसंद का पहला गीत सुनिया जाए। तो बताएं आपकी पसंद का पहला गीत।
सर, मेरा सबसे पहला पसंदीदा गीत उपकार फिल्म का है, जो 1967 में थी, जो मेरी माँ को और सबको बहुत पसंद है गाना। और वो सबको आशीर्वाद तौर पे वो गाना हमेशा कहती थी, हर खुशी है वहाँ तू जहाँ भी रहे,
वाह, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी
रहे, वहाँ तू जहाँ भी रहे। बिल्कुल,
बहुत सुंदर।
उपकार फिल्म का ये माँ का आशीर्वाद हमेशा सबके लिए
जी
हमेशा
जी
रहा सर। बिल्कुल,
बहुत ही अच्छा गीत। तो चलिए आशीर्वाद स्वरूप ही सुनते हैं उपकार फिल्म का ये गीत।
हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी
उपकार फिल्म के इस आशीर्वाद स्वरूप गीत के साथ ही श्रोताओं समय हो चला है हमारे विनायक धनेश्वर जो कि हैं हमारे आज के सप्ताह के श्रोता उनसे आगे बातचीत करने की। तो विनायक जी, जैसा कि आपने प्राथमिक जो परिचय के क्रम में आपने हमें बताया कि आप डिफेंस सर्विस में थे, आप तो हम ये जानना चाहेंगे कि डिफेंस सर्विस में रहते हुए आप किस तरह का काम कर रहे थे या आपका काम क्या था?
मैं डिफेंस सर्विस में जो था, मैं सिविलियन स्टाफ में था और मैं शुरू से क्लर्क था, बाद में प्रमोट होते होते मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन गया। बाकी कहना ये चाहूंगा, मेरे हाथ में तलवार या बंदूक नहीं थी, एक कलम था जिससे मैंने हमारे देश के जो फौजी भाई है उनका जो पूरा जो वेलफेयर मैटर के छे जो थे वो मेरे कलम से लिखे गए सर उनके पूरे। तो जो हमारे फौजी भाइयों का पूरा वेलफेयर का जो काम रहता है, सभी रहता है उनका, शुरू से लेके आखिर तक, वो साथ में जब कलम ने दी और एक देश सेवा करने का मौका मिल गया सर।
वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा सेवा का अवसर मिला आपको। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ कहाँ पदस्थ रहे, आप शुरू से थे इस
सर? रहने वाला महाराष्ट्र अहमदनगर का था, सबसे पहली सर्विस मेरी अहमदनगर में रही, बाद में इंदौर महू में रही सर, फिर दिल्ली में भी रहा और ऑफिस काम से जबलपुर, इलाहाबाद, बेलगाम हमेशा रहा सर, आना जाना।
अच्छा,
और लास्ट मेरी सर्विस पूरी नासिक में रही है, जो मेरी होम टाउन है सर।
वाह, तो कितने साल की सेवा आपने दी अभी तक?
सर मेरी 36 ईयर की सर्विस है सर देश की।
वाह वाह वाह, 36 साल की लंबी सेवा आपने दी है हमारे सैनिक भाइयों को और साथ ही हमारे देश को भी। तो हम ये भी जानना चाहेंगे विनायक जी कि यही फील्ड क्यों चुना आपने, क्या आपका सपना था या फिर चूंकि एक नौकरी करना है इसलिए हो गया, क्या है मतलब डिफेंस में आने का कारण क्या था?
सर कारण ये है सर कि सबसे अच्छा जो डिसिप्लिन माहौल जो देखने को मिलता है ना सर,
जी जी,
वो हमेशा फौज में मिलता है सर।
और
जो आदमी डिसिप्लिन में रहेगा वो जिंदगी में कभी चोट नहीं खाएगा, ये बहुत अच्छी शिक्षा हमें डिफेंस से मिलती है सर।
जी जी जी,
और खास बात ऐसे कि डिफेंस के जो हमारा ऑफिस टाइमिंग थे वो मॉर्निंग में रहते थे 8 से 2 बजे तक, ये मेरे
अच्छा
लिए सबसे आकर्षण रहा है सर। बिल्कुल,
अच्छा अच्छा जी जी जी।
तो मुझे बहुत सारे ऑफर आए थे उस समय, मैं जब जॉब कर रहा था मैं शिक्षा विभाग में भी सीनियर का मतलब क्लर्क का ड्यूटी कर रहा था, उसी बीच मुझे डिफेंस का कॉल आ गया तो मैंने उसको प्रायोरिटी दिया और इससे अच्छा देश सेवा करने का मौका दुनिया में कहीं नहीं है सर।
तो जैसा कि आपने बताया कि 8 से 2 आपका समय था सेवा देने का, तो 2 बजे के बाद जब आप फ्री हो जाते थे तब फिर उस समय का कैसा सदुपयोग करते थे आप?
सर शुरू शुरू में सर्विस का सदुपयोग में छोटा मोटा ऐसे जॉब करता था, कुछ दिन के बाद वो भी कर गया, बाद में फिर अपना जो माहौल है संगीत एंटरटेनमेंट और समाज सेवा के लिए रहता था। बिल्कुल,
अच्छा, तो कार्यक्रम की प्रस्तुति वगैरह देते थे आप, ऐसा कुछ है क्या?
नहीं नहीं, प्रस्तुति वगैरह नहीं सर।
हाँ, अच्छा अच्छा, तो डिफेंस सर्विस में रहते रहते हुए तो बहुत सारी चीजों का आपको अनुभव हुआ होगा या कुछ ऐसी बातें होंगी, तो हम वो भी चीज जानना चाहेंगे मितान जी कि डिफेंस सर्विस में रहते हुए कुछ ऐसी यादगार बातें हैं जो आप हमको बताना चाहें तो हम वो भी जानना चाहेंगे।
सर मुझे डिफेंस सर्विस में सर्विस करते करते सबसे मुझे खुशी की बात है कि मेरा भारत महान ये मुझे देखने को मिला, हर राज्य के लोग, मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मतलब ऐसा एक भी जगह नहीं कि जहाँ मुझे वो मिला नहीं, मतलब और उन सबके बात करके मुझे और उनके साथ रहते रहते बहुत खुशियां मिली सर।
हम थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहेंगे डिफेंस सर्विस के संदर्भ में मितान जी, कि आप डिफेंस सर्विस के किस क्षेत्र में थे, ये भी थोड़ा सा विस्तार थोड़ा सा जानना चाहूंगा।
हमारी जो ड्यूटी रहती थी वो ऑफिस में रहती थी। हमारा फील्ड से कोई मतलब नहीं, हम ऑफिस काम काज के लिए थे। एक फौज में दो होते हैं, एक सिविलियन स्टाफ होता है, एक फौजी स्टाफ होता है।
उसी बात में आना चाह रहा था कि मतलब आप सिविल सर्विस सेवा में थे, इधर थे, तो वो थोड़ा सा इसमें किस तरह का जैसे आप काम करते हैं बता रहे थे, तो उसमें जो है कोई एक समय ऐसा होता है जब लगता होगा ना कि ठीक है हमको भी फौज में थे, तो कभी हथियार उठाने की इच्छा हुई ऐसा?
कैसा कैसा सर?
मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ऑफिस वर्क करते थे ना, तो बहुत सारी चीजें आप देखते रहे होंगे, सुनते रहे होंगे जो हमारे फौजी भाई करते थे या करते आ रहे हैं, तो क्या कभी आपको ऐसी इच्छा हो कि मैं भी कभी हथियार उठाकर देश की सेवा करूं, ऐसा कुछ इच्छा हुई कभी?
नहीं सर, मैंने शुरू में बताया
जी
सिविलियंस के हाथ में हथियार नहीं होते, फौज के हाथ में होते हैं। तो मेरे हाथ में हथियार नहीं था, वाकई मेरे हाथ में कलम था, तो कलम से मैंने बहुत सारा काम किया है। वो
जी कलम की ताकत से आपने देश की
कलम की ताकत, वो बोलते हैं ना पेन इज माइदर देन स्वर्ड, बिल्कुल वही रहा।
जी 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 जी, नहीं नहीं बहुत बढ़िया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी इस सर्विस के संदर्भ में बातें करते हुए विनायक जी, तो आगे बातें और करेंगे। फिलहाल बताएं अपनी पसंद का दूसरा गीत।
सर 1960 में एक माँ बाप फिल्म बनी थी सर, उसमें एक रफी साहब का गाना था ले लो दुआएं माँ बाप की, जिसे चित्रगुप्त साहब ने संगीत दिया था और राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था। ये भी गाना आज के दौर में घर घर में ये बहुत जरूरी है सर, बिल्कुल।
जी 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 सही,
माँ बाप के प्रति हर आदमी अपने जो कर्तव्य होना चाहिए उससे कुछ दूर होते जा रहे हैं, तो ये गाना हर एक के लिए एक अच्छा मतलब उसको जगाता है। बिल्कुल
सही बात, अंदर की जो भावना है वो जगाता है, और साथ ही साथ एक बंधन में जो पारिवारिक बंधन की चीजें हैं और उसकी भी बातें करता है कि जुड़ के रहने की बात करती है।
एक संदेशात्मक गीत है सर ये, बिल्कुल।
बहुत, तो पहला गीत हमने आशीर्वाद स्वरूप सुना मितान जी आपकी पसंद पर, दूसरा गीत अब हम सुनेंगे संदेशात्मक रूप में। जी कुछ और कहना चाह रहे थे क्या आप इस गीत के संदर्भ में?
ये गीत के बारे में बोला था मैंने।
ठीक है, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का दूसरा गीत।
ले लो दुआएं माँ बाप की, हो ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कचरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कचरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की,
संदेश भरे इस गीत के साथ पुनः स्वागत श्रोताओं आप सभी का हमारे कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में, और साथ ही स्वागत हमारे आज के सप्ताह के श्रोता विनायक धनेश्वर जी का जो है नासिक महाराष्ट्र से। तो मितान जी अब हम ये जानना चाहेंगे कि रेडियो से जुड़कर ही हम ये बात कर रहे हैं, तो रेडियो सुनने का जो सफर है वो आपका कब हुआ और कैसे हुआ?
सर मेरे रेडियो का मुझे बचपन से मेरा सफर रहा है 1969 से रेडियो से। उस समय रेडियो लेना भी एक बड़ा ख्वाब होता था।
जी जी जी,
और रेडियो से सबसे पहला मैंने जो गाना सुना है सर वो लारी लप्पा लाई रखे था, इससे मेरी शुरुआत हुई सर। और रेडियो का बचपन से जो जो दौर आता गया मैं रेडियो का साक्षीदार रहा हूँ, और आज का भी जो नया रेडियो का जो तकनीकी कमाल है उसका भी मैं साक्षीदार हूँ सर, और रेडियो के जितने भी चढ़ उतार हुए सर वो मैंने देखे है, और रेडियो दिन ब दिन सर जवान होते जा रहा है सर, बिल्कुल।
अच्छा जी जी जी,
और उसी का ही एक दूसरा हमारा अर्पा रेडियो, वो भी उसी का एक कमाल है, सबसे तकनीकी का अच्छा कमाल, और इतनी खुशियों की चाबियां भर दी है रेडियो ने, उसके अंदर अर्पा का तो कोई हिसाब ही नहीं सर।
जी जी, सब आपका
अर्पा ने मुझे, अर्पा ने मुझे अपनी हिंदी सुधारों के अंदर भी अच्छा गाइडेंस दिया है।
जी जी जी,
अच्छे अच्छे कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में उसके कलम से, और हमारे जो शीर्षक गीत के अंदर जो छत्तीसगढ़ के आन बान और शान वाले वो पांच कवि है।
जी, जी जी,
हर शीर्षक के बाद उनकी जो कविता आती है सर उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया।
जी जी,
इसके लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं, इतना सुंदर दिया है सर उन्होंने, बिल्कुल। और रेडियो के दौर के जो पुराने जैसे लाइसेंस के साथ चलते थे, अभी मेरे पास सोलर वाला भी रेडियो है सर। अच्छा, चार से जो होता है बिल्कुल। हाँ सर।
अरे वाह, बताएं इस बारे में थोड़ा सा बताएं मितान, मैं पहली बार सुन रहा हूँ सोलर रेडियो के बारे में, तो थोड़ा सा।
अभी हर साल हम एक इंटरनेशनल ट्रिप में जाते हैं सर, जैसे हम पिछले साल दुबई गए थे तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हमने गए थे तो हमें सोलर का रेडियो मिला सर बिल्कुल।
अच्छा,
जो बिल्कुल सोलर से चार्ज होता है और कम 24 आवर्स चलता है बिल्कुल।
वाह, तो उसके लिए कुछ विशेष सेटअप करना पड़ता है या सिर्फ धूप से?
कोई नहीं सर, सूरज के सामने गर्मी में रख दो सर, जहाँ सनलाइट आता है उधर वो अपने आप चार्ज होता रहता है सर बिल्कुल।
अच्छा, अरे वाह, तो कहाँ कहाँ का स्टेशन हम उसमें सुन पाते हैं मितान?
सर हमारे नासिक एरिया के अंदर जो भी होते हैं ना वो भी लगते हैं और यूट्यूब के माध्यम से रेडियो अर्पा भी उसमें अच्छा सुनने को मिलता है सर।
अरे वाह, मतलब हाईटेक है एक तरह से आज के समय के
साथ। हाँ बिल्कुल, एकदम इतना क्लियर लगता है सर कि हमें ऐसा लगता है नहीं हम नासिक में नहीं हम बिलासपुर में बिल्कुल।
अच्छा,
इतनी शानदार क्वालिटी सर उसकी।
अच्छा अच्छा, कभी आपके
रेडियो अर्पा का भी अपना तकनीकी कमल है उसमें, उनका भी बहुत अच्छा योगदान है उसके लिए भी।
जी जी जी,
तो संगीत का आनंद है ना सर, बहुत मिल जाता है सर।
जी जी जी, इस पूरी बातचीत में आपने एक लाइसेंस की बात कही मितान जी, तो रेडियो सुनने के लिए एक समय में लाइसेंस लगता ही था, तो आपने भी लाइसेंस लिया था वो?
हाँ सर, मैं मुझे वो दिन अभी भी याद है, हमारे पिताजी मुझे डाकघर ले जाया करते थे, वो लाइसेंस का उस 35 या 35 रुपीज भी भरते थे।
अच्छा,
तो उसमें लाल हरे पीले कलर के रंगीत स्टैम्प जैसे पोस्टल स्टैम्प होते ना वैसे वो लगाते थे, स्टैम्प मारते थे ना, वो देख कर एक अजीब खुशी होती है, बोलते थे देखो अपना अभी रेडियो का लाइसेंस मिले बिल्कुल, अपना रेगुलर हो गया बिल्कुल, अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं
जी,
और ये हमें बेटा हर साल में करना है, मतलब ऐसा वो बताते थे बिल्कुल।
अच्छा अच्छा, उसका एक फिक्स रहता रहा होगा ना मितान जी?
हाँ उस समय वैसे ही था, वो जैसा पोस्ट का पासबुक होता है ना सर, अभी भी जो देखने को था। अच्छा। उसी टाइप से थोड़ा होता था वो बिल्कुल।
जी 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 जी, वो भी कितना सुखद दिन रहा होगा ना मितान जी के लिए, रेडियो सुनने के लिए हम लाइसेंस लेके।
बिल्कुल सर, उस जमाने में सर रेडियो के लिए हमने इतने कष्ट उठाए, एरियल लगाना पड़ता था, डिस्टर्बेंस भी रहते थे, फिर भी रेडियो को सुनते थे, और आज के दिनों में तो इतना क्लियरिटी आ गया तो उसका कोई जवाब ही नहीं बिल्कुल।
जी जी,
एकदम करेक्ट सुनने को मिलता है, जैसे अभी हमारा अभी करीब के शीर्षक गीत चल रहा है वो गाने भी बढ़िया सुनने को मिल रहे हैं सर आज के इसमें।
वाह, मतलब एक तरफ आप हमारे अर्पा रेडियो का कार्यक्रम सुन भी रहे हैं और दूसरी तरफ रेडियो के कार्यक्रम के लिए इंटरव्यू भी दे रहे हैं। वाह, बहुत सुखद संयोग है ये कि सुनते सुनते ही कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करना विनायक जी। तो कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का तीसरा गीत, तो बताएं तीसरा गीत अपनी पसंद का।
सर अभी इस कार्यक्रम के माध्यम में आज मुझे मौका मिला, एक क्लासिकल गीत है सर।
जी जी बताएं।
बड़ा आदमी फिल्म का जो 1961 में बनी थी, जिसे प्रेम धवन साहब ने लिखा था और संगीतकार चित्रगुप्त थे, वो अखियन संग अखिया लगे आज, ऐसा गाना अखियन संग अखिया लगे ऐसा गाना सर। और ये गाने की खास बात ये सर, जैसे कोहिनूर फिल्म का जो क्लासिकल गीत है ना मधुबन में राधिका नाचे रे,
जी जी,
उस गाने के संगीत के बाद सर क्लासिकल के ऊपर जो दूसरा गाना ये जो बना है सर, इसके मुकाबले में कोई गाना नहीं बना सर बिल्कुल।
अच्छा,
इतना शानदार संगीत है और चित्रगुप्त साहब ने जो सभी साज का जो इस्तेमाल किया है बहुत ही लाजवाब सर। जब भी आप ये गाना सुनेंगे तो आपको कोहिनूर का गाना भी आपके आंखों के सामने आ जाएगा सर।
बिल्कुल, तो आपके माध्यम से ये मतलब नया क्लासिकल गीत होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं नहीं सुना हूँ इस गीत को, तो मैं जरूर सुनता हूँ।
तो बहुत बढ़िया गीत है सर, बहुत बढ़िया।
अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये शानदार सा क्लासिकल गीत।
अखियन संग अखिया लागी आज, अखियन संग अखिया लागी आज, जुमे बार बार मेरे मन में प्यार, नित ऐसा तो मौसम आए ना, अखियन संग अखिया लागी आज, अखियन संग।
बड़ा आदमी फिल्म के इस शानदार क्लासिकल गीत के बाद स्वागत पुनः आपका एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में विनायक जी। तो विनायक जी, हम ये जान गए कि रेडियो सुनना, काम करना, ये सारी चीजें तो आपके दिनचर्या का हिस्सा रहा ही है, लेकिन इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक है, हम ये भी जानना चाहेंगे।
सर मेरे जो शौक है ना सर, वो मेरे 5 शौक है सर। सबसे पहले मेरा रेडियो सुनना, रेडियो मित्र से दोस्ताना करना, किताब पढ़ना, सकारात्मक सोच, सेवा भाव और साइकिलिंग।
साइकिलिंग
मैं स्वास्थ्य हेतु अपने डेली रेगुलर साइकिल चलाता हूँ 10 किलोमीटर सर।
जी जी 10 किलोमीटर वाह।
हाँ डेली मेरा वही रूटीन रहता है सुबह का, सवेरे का सूरज साथ साथ ही होता है बिल्कुल साइकिल पे।
गुड गुड। तो सवेरे
वो भी साइकिल सर, आज के जमाने गियर वाली साइकिल नहीं सर, पुराने जमाने के एटलास वगैरह जो रेगुलर साइकिल बोलते थे।
जी, जी।
वही आज भी मेरे पास है, आज भी आप देखेंगे तो न्यू ब्रांड में आपको नजर आएगी सर। और मैं साइकिल प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेता रहता हूँ, मैं नासिक में 3 बार प्रथम स्थान पे रहा हूँ इसके बारे में।
वाह वाह बहुत बहुत बधाई है, फिर तो आप तो बहुत बधाई के पात्र हैं इस बारे में। तो साइकिलिंग तो अपने आप में बहुत बड़ा एक एक्सरसाइज है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभप्रद है ये।
बहुत तो, अच्छा स्वास्थ्य के लिए सर, साइकिल से अपना दिन भर की एक साइकिल सुबह की जो होती है पूरी थकान वगैरह मिटा देता, आदमी दिन भर फ्रेश रहता है। और साइकिलिंग करने के बाद दूसरे एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं होती, सब मेंटेन रहता है सर।
जी 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 जी। तो ये तो साइकिलिंग के साथ साथ दिनचर्या और जीवनचर्या को भी सेट करने जैसी चीज हो गई ये बात। तो विनायक जी हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आपके घर परिवार में रेडियो को लेकर के कैसा माहौल है, जैसा मतलब आपकी दीवानगी है वैसा आप परिवार के सदस्यों को रेडियो सुनने का शौक है।
सर मेरा लड़के को मेरा सुनते सुनते उसको थोड़ी आदत हो गई सर। और मिसेस को भी आदत है सर, बाकी जितना मैं सक्रिय हूँ एक्टिव उतने वो थोड़े कम है बिल्कुल। बाकी हमारे घर में टीवी ये नॉमिनल के बराबर है, 90% हमारा रेडियो चलता है घर में।
जी जी जी।
और 3-4 टाइप के रेडियो रखे हैं और टीवी बहुत ही कम चलता है सर, नहीं केवल अगर मैं घर पे हूँ तो टीवी के तो कोई लगाता भी नहीं।
अच्छा जी।
अगर मैं बाहर जाऊंगा तो घर वाले टीवी लगेंगे सर, ऐसा माहौल है सर।
जी जी जी। तो
और सर रेडियो के अंदर से जो ज्ञान मिलता है सर
जी जी
वो बाकी किसी से, अभी देखो ना कुछ दिन पहले हमारे रेडियो अर्पा में नदियों की श्रृंखला के ऊपर एक टॉपिक पे लेक्चर आ रहा है बिल्कुल।
जी जी।
अभी सिंधु नदी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी और इतनी ये जो रेडियो को अंदर मिली अर्पा रेडियो में वो हमें टीवी थोड़ी दे सकता है सर। बिल्कुल
जी बिल्कुल बिल्कुल।
हमारी लैंग्वेज सुधारना तो रेडियो सिखा देता है सर, टीवी कुछ नहीं, टीवी आदमी को अंदर घृणा पैदा कर देता है मतलब मेरे हिसाब से।
हाँ ये बात लगातार हम भी पिछले कई श्रोताओं से बात हुई तो यही बात लगभग उनके इस तरफ से भी आई कि टीवी में जिस तरह के कार्यक्रम आते हैं वो कहीं ना कहीं क्लेश का कारण बन रहे हैं, ऐसा उनका भी।
उसमें सर हमारे जो हिंदुस्तान की जो सही संस्कृति है उसके वो अपोजिट दिखाते हैं सर, वास्तव में ऐसा नहीं है सर बिल्कुल, बाकी उसको एकदम उसका भड़क प्रदर्शन रहता है उसका, इसीलिए वो पसंद नहीं सर।
तो विनायक जी हम ये आप जहाँ से हैं नासिक से, तो नासिक महाराष्ट्र जो है वो अपने आप में अगर दर्शनीय स्थल के रूप में देखा जाए तो एक अलग ही उसका महत्व है। तो नासिक में देखने घूमने लायक क्या क्या चीजें हैं बताएं, क्योंकि हम कल्चरल तरीके से भी जाना चाहते हैं।
जी। सर नासिक ये महाराष्ट्र राज्य का 4th नंबर का शहर है।
जी जी।
और ये प्रभु रामचंद्र और कुंभ की नगरी है और ये क्रांति वीरों की भूमि है। और जाने माने साहित्यिक ज्ञानपीठ पुरा शिरवाड़कर साहब भी नासिक के आन बान शान रहे और फिल्म इंडस्ट्री के मसीहा दादा साहब फाल्के की भी नासिक नगरी है।
अच्छा।
और रावण की बहन शूर्पणखा का नाक लक्ष्मण ने काटने से इस शहर का नाम नासिक हो गया सर बिल्कुल।
अच्छा वाह ये।
और पंच मतलब उनके वनवास के समय प्रभु श्री रामचंद्र नासिक पंचवटी में रहे थे और उनका वास्तविक आकीदा उसी घर से मेरा पंचवटी में घर आता है, जो जहाँ वो रहे उधर से मेरा घर 1.5 किलोमीटर दूरी पे बिल्कुल। नासिक शहर में गोदावरी नदी बहती है, नासिक शहर ये हमारी तंत्र मंत्र की भूमि है। नासिक के नजदीक में ओझर है जहाँ एचएल का विमान बनते हैं, करेंसी नोट प्रेस भी सर। अब पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो सर नासिक से 28 किलोमीटर दूरी पे त्र्यंबकेश्वर आता है सर।
हाँ हाँ
जो महादेव मंदिर के 12 ज्योतिर्लिंग में आता है जो 28 किलोमीटर पे हमारे यहाँ से।
जी जी जी।
और नासिक शहर से 65 किलोमीटर दूरी पे सप्तशृंगी काली माता का पहाड़ी स्थित मंदिर है जो आधा शक्तिपीठ माना जाता है सर। और हमारे नासिक से सर 80 किलोमीटर दूरी पर शिरडी के साई बाबा का मंदिर है जो आप सबको पता है बिल्कुल। तो पर्यटक यहाँ आते हैं तो ये सब उसका लुत्फ उठाते रहते हैं, सभी जगह दर्शन करते हैं। और हमारा नासिक शहर सर अंगूर प्याज के लिए बहुत मशहूर है, यहाँ से सप्लाई पूरा 2/3 हो जाता है पूरे हिंदुस्तान में।
वाह वाह वाह।
और जो चॉकलेट है ना सर, मैंगो मून पान पसंद, ये हमारे नासिक के पास में एक रावल गांव है, वही वो फैक्ट्री है उसकी, वो वहां से सप्लाई होता है सर। और अभी नासिक शहर स्मार्ट सिटी के अंदर, उसके अंदर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे विकास काम चल रहे हैं सर, और वो सभी कार्यपथ पर है सर बिल्कुल। और इसी माध्यम से रेडियो अर्पा के सभी स्टाफ को, सभी मित्रों को भी आमंत्रण देना चाहे जब भी नासिक आने का मौका जरूर हासिल करें और मेरे घर में आएंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी इस पर्यटन के माध्यम से।
मैंने सुना है नासिक का प्याज भी बहुत फेमस है मितान जी।
हाँ, प्याज बहुत फेमस है सर, पूरा हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में जाता है सर। बिल्कुल,
क्योंकि एक बार जाना हुआ था मेरा उस तरफ तो मैं एक बोरी प्याज लेके आया था वहां से।
मतलब बिल्कुल। और सर बात ऐसी सर, छत्तीसगढ़ के अंदर भाटापारा धमतरी यहाँ के चावल नासिक में आते हैं सर।
अच्छा, अरे वाह।
तो हमारे उसी ट्रक के अंदर नासिक का प्याज पूरा छत्तीसगढ़ एरिया में जाता है।
जी 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 जी,
वो ज्यादा मतलब रायपुर के सभी डिस्ट्रिक्ट को वो सप्लाई कर देता है बिल्कुल वहां से। और छत्तीसगढ़ का और महाराष्ट्र का ये इसमें बहुत अच्छा रिलेशन रहा है सर, उधर का चावल इधर का प्याज और अंगूर हमेशा बने रहे। बिल्कुल
बिल्कुल सही कहा।
और छत्तीसगढ़ के भी चावल हमारे यहाँ बहुत आता है नासिक में, और वो भी नंबर वन क्वालिटी का होता है बिल्कुल।
मतलब सोचिए कितना सुखद संयोग है मितान जी की, हो सकता है कि जो चावल आप अभी खा रहे हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ का हो, और इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के पहले मैं पोहा खाया था मितान जी, तो मैं प्याज काट के खाया था साथ में, तो हो सकता है प्याज भी आप ही के शहर का हो। तो
हमारे यहाँ चावल है ना सर छत्तीसगढ़ का भाटापारा का, हो सके तो मैं आपको उसका सेल भी बता सकता हूँ।
जी अच्छा जी।
और राजनांदगांव से पोहा भी हमारे यहाँ बहुत आता है सर नासिक।
वाह,
राजनांदगांव।
खान पान का आदान प्रदान जो है वो कितने चीजों को जोड़ देता है, कितना सुखद एहसास है। तो नासिक जो है अगर देखा जाए मितान जी, तो पर्यटन के दृष्टिकोण से, साहित्यिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, खान पान के दृष्टिकोण से, फल फूल के दृष्टिकोण, सब्जी के फल, मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसकी दृष्टिकोण से हम उसको कमतर रख सके, मतलब सारी चीजों से बिल्कुल। तो मैं इसलिए भी जाना चाह रहा था इन सारी चीजों को क्योंकि मैंने पढ़ा है था, तो नासिक जो है बहुत सेंट्रलाइज्ड लगा मुझे बहुत, और बहुत अच्छा लगा
सर। ये नागपुर भुसावल लाइन के अंदर ही आता है, और आपके यहाँ से भी मतलब, और बिलासपुर रायपुर से डेली 10-12 5-6 ट्रेन हमारे रूट से चलती है सर। बिल्कुल
वाह। तो कभी मौका लगेगा तो नासिक हम जरूर आने की
जरूर आएगा सर, आपका स्वागत है। और आप अकेले मत आएगा, पूरी वीडियो आदरणीय सज्ञा टंडन जी, चिपड़े साहब, सुविधा जी, मातृगा जी, जो जो बहुत सारे हैं सबको लेके आइएगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो
नासिक में आएंगे तो आपको त्र्यंबक के पर्यटन के कुछ दर्शन हम खुद करवा देंगे हमारी कार से। बिल्कुल
वाह वाह। तो बिल्कुल प्रयास रहेगा मितान जी कि हम अर्पा टीम के साथ आपके नासिक पहुंचे। तो एक अच्छी बातचीत के साथ अब समय हो गया है कि आपकी पसंद का अंतिम गीत सुनने का।
सर एक सकारात्मक गीत है सर, जिसे जब भी सुनता हूँ तो दिल एकदम एक जीने की राह दिखा देता है सर।
जी जी।
तो वो जो गाना है सर, समझौता फिल्म का गाना है, किशोर दा का गाया हुआ, और हिंदी और का संगीत का, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं ओ। ये गाना सर।
वाह, आप ही गाते तो हमें और आनंद आ रहा था सुन के आपकी आवाज में भी।
समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं हो, पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, के मधुबन फिर भी खिलते हैं हो, समझौता समझौता, गमों से कर लो समझौता, गमों से कर लो।
सप्ताह के श्रोता, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम आ चुके हैं। इस गीत के बाद ही श्रोताओं, विनायक धनेश्वर जी से हमारी बातचीत हो रही है। इतनी सारी चीजों में बात हुई, अलग अलग चीजों को लेकर के, बड़ा ही अच्छा लग रहा है कार्यक्रम में उनसे बातचीत करना। पर चूंकि हर कार्यक्रम की एक समय सीमा होती है और एक रहता है जिसमें हमको बातचीत करना ही रहता है सारी चीजों को लेकर के, तो विनायक जी अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आप पुराने श्रोता हैं, बहुत लंबे समय से आप रेडियो सुन रहे हैं, तो आप क्या क्या बदलाव पाते हैं पहले और अब के प्रसारण में हो, चाहे श्रोताओं के सुनने की बातों को लेकर के हो, या किसी भी तरीके के बदलाव को आप किस तरह से महसूस करते हैं या पाते हैं?
सर, बचपन से जब शुरू शुरू में रेडियो सुनते थे तो उसमें बहुत डिस्टर्बेंस आता था, फिर भी मनोरंजन का कोई साधन नहीं होने से उसमें लगाव रहता ही था।
जी जी,
जैसे जैसे समय बदलता गया, रेडियो ने भी क्रांति कर दी और आज रेडियो जवान, मतलब एक बिल्कुल युवा जवान हो गया सर, बिल्कुल। आज कौन सी भी जगह देखो, रेडियो के जो क्लियरिटी, जो तकनीकी का कमाल है, उसी ने श्रोताओं को जादूगर बना दिया। आज मैं हो सके तो मैं एक ही पल में छत्तीसगढ़ भी सुन सकता हूँ, दूसरे अगर जो मूड हो गए तो मैं हरियाणा, उससे कहीं भी जा सकता हूँ सर। और कार्यक्रम भी अच्छे अच्छे, और सर खास बात ऐसे ना सर, रेडियो ने सबसे मुझे ज्यादा दिया अपने दोस्त, अपना प्यार। और ये एक रेडियो सर, उसने मुझे छत्तीसगढ़ से मेरे कई सारे मित्र बनाए जो मेरे आज खास भी है, बहुत सारे मित्र है हर जगह के बिल्कुल, और हम मिलते हैं और हमारा एक रेडियो का ग्रुप है सर, एक दूसरे की शादी में हम शरीक भी होते रहते हैं। अभी हमारे कुछ रेडियो के मित्र पटना में भी थे तो हमारा पूरा ग्रुप साथ में गया था, बिल्कुल बिल्कुल, सभी रेडियो सभी सुख दुख के साथ रहते, सभी हम एक दूसरे के आना जाना रहता है किसी न किसी कारण से, किसी की शादी हो या कोई हो, हम जरूर आपस में मिलते रहते हैं सर।
जी जी,
और छत्तीसगढ़ के हमारे आदरणीय श्रोता, अभी कुछ दिन पहले अगर हमारे एक रेडियो श्रोता सम्मेलन होने वाला है 24 अगस्त को महाराष्ट्र के बुलढाणा में।
जी जी जी,
तो हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम साहू गुरु जी जो राष्ट्रपति पदक से सम्मानित है, उनसे भी मुझे मिलने का मौका मिला, ऐसे उनसे मुलाकात मेरी हो चुकी है।
जी जी,
और छत्तीसगढ़ के मित्र तो मेरे बहुत सारे क्लोज है, जैसे रतन जैन है, अनिल तिवारी है, हमारे जावेंद्र कुमार ध्रुव साहब ने, उन्होंने तो मुझे तो बहुत ही अलग पहचान दी है सर।
जी 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 जी,
किस के नाम लो सर, बहुत आंखों के सामने।
जी जी जी, सही बात है, सही।
और रेडियो के सर एक बात है सर, अभी हमारे नासिक में ये रेडियो विश्वास है, वो भी कम्युनिटी रेडियो है।
जी जी,
उनके तरफ भी नए कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं, अड़पा के भी सुनने को मिलते, हर कम्युनिटी रेडियो की अपनी अपनी छवि बनी हुई सर।
जी जी,
जिसका आनंद लेंगे उतने आप अपने आप को मतलब ये करते जाएंगे सर, बिल्कुल आपका बुद्धि का विकास और ये कार्यक्रम के वजह से होगा सर, जो अच्छे अच्छे कार्यक्रम है।
जी जी,
अभी हिंसा को कहो नो, ये कार्यक्रम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है इधर भी, हमारे यहाँ भी।
अच्छा, अरे वाह,
मतलब मुझे कम्युनिटी रेडियो भी बहुत पसंद है, रेगुलर आकाशवाणी के भी पसंद है, इंटरनेट वाले भी सुनता रहता हूँ बिल्कुल, और हर रेडियो के सर कुछ ना कुछ खास करके सर मैं आपके बारे में बताना चाहूंगा।
जी जी,
जब भी छत्तीसगढ़ी गीत की फरमाइशी कार्यक्रम आप गूगल फॉर्मेट में देते हैं।
जी जी,
और जैसे और आपका वो हमारे नासिक के मिता विनायक धनेश्वर जी, आपका जो अंदाज था वो इतना लाजवाब, पहली बार ऐसा किसी का अलग अंदाज, हमारे घर वाले भी बहुत खुश हो गए थे।
धन्यवाद मितान जी इस प्रयास को पसंद करने के लिए। तो अब आपसे इतनी सारी बातें हुई और अभी भी मेरे अंदर बहुत सारी चीजें जानने समझने की हो रही हैं आपसे,
समय की बंदिश होती है।
जी जी जी, तो उसके चलते आज के इस कार्यक्रम में विराम देना होगा हमें, पर अंतिम में बातचीत आपसे ये कि क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
सर, श्रोताओं को यही संदेश देना चाहेंगे, रेडियो अड़पा की गरिमा बना के रखे, बहुत ही अच्छा है और अच्छे अच्छे सुझाव देने चाहिए।
जी,
और जो ग्रुप के अंदर है ना, जो रेडियो से रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है सर।
जी जी जी,
उसमें हमारे कुछ श्रोता थोड़ी गड़बड़ करते हैं सर, वो नहीं होना चाहिए।
जी जी जी,
और अर्पा रेडियो को सबने समझ लेना बहुत जरूरी है, बहुत सारे अच्छे भी ऐसी बात नहीं है, सभी समझते बहुत थोड़ी गड़बड़ कर देते, और जो हमारे कवि मित्र है ना सर,
जी जी,
उन्होंने अर्पा के लिए विशेष योगदान देना बहुत जरूरी है सर, बिल्कुल,
और
उनके माध्यम से हमारे मतलब जो कल्चर है उसके अंदर उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो जाता है, उनके साहित्य का, उनके प्रभुत्व का सर,
जी,
तो ये मैं चाहता हूँ सर, बिल्कुल। और सर हिंदी सुधारे कार्यक्रम हमेशा बरकरार रखे सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम है सर।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
मेरी खामियां क्या थी सर वो रेडियो आरपा ने मुझे खुद को बताई सर।
जी,
मतलब मुझे बताने में कोई वो इसका नहीं हो रही सर।
जी,
बिल्कुल जो सही है वो सही है सर। बिल्कुल
नहीं, सही बात है, अपनी कमियों को जो स्वीकार कर ले वही सच्चा होता है। तो बहुत सारी चीजें, और कोई ऐसी बात जो रह गई हो तो हम चाहेंगे कि कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप कह दें वो बात।
बढ़िया सर, और खास करके सर जैसे अभी हमारा रेडियो अर्पा का तीसरा वर्धापन दिन बिलासपुर में ऐसे हुआ,
जी जी,
उसके इतने सारे फोटोज वो वगैरह देखे सर, मुझे भी लगा कि मैं भी आपके साथ हूँ। बिल्कुल
उधर
ये श्रोताओं के नाम आप पढ़ते थे, मुझे लगा कि मैं भी उनके साथ हूँ, ये मेरे लिए भी एक मिलन था सर इनडायरेक्टली।
जी जी, दरअसल क्या हुआ मितान जी, कार्यक्रम पहले बहुत समय से हम करने के वो करते पर किन्हीं कारण से हो नहीं पा रहा था, ये बहुत कम समय में तय हुआ ये कार्यक्रम, और फिर कुछ कुछ फाइनेंशियली भी चीजें हमको तय करने में समय लग गया, तो फिर हमने सोचा कि
फिर भी मेरा एक उसूल है सर, रेडियो श्रोता सम्मेलन है, रेडियो का कोई खास कार्यक्रम हो, रेडियो की कोई कार्यशाला हो, रेडियो का कोई रिपोर्टिंग अगर मुझे मालूम होता है ना तो कहीं भी हमें जाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। अगर आप बोलेंगे ना हमारा कार्यक्रम अभी श्रीनगर में होगा तो भी धनेश्वर वहाँ पहुँच सकता है, वो भी अपने अरेंजमेंट से सर।
बिल्कुल, तो आने वाले
रेडियो के प्रति सर अपना समझौता एकदम शुरू से रहा सर। बिल्कुल,
ये जुनून ही है जो आज आपको हमारे सप्ताह के श्रोता तक लेकर आया है मितान जी, और आने वाले समय में हम जब भी जो कार्यक्रम कुछ करते हैं में तो हम आपको जरूर याद करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ही अच्छा लगा आपकी पसंद का गीत भी सुनकर, और मौका लगेगा तो हम आगे भी कभी बात फिर से करेंगे।
बिल्कुल सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, जाते जाते रेडियो अर्पा के डायरेक्टर आदरणीय संध्या टंडन जी,
जी
उसके बाद पूरे टीम को मेरा सर फिर एक बार मंगल शुभकामनाएं, और रेडियो अर्पा का झंडा हमेशा ऊंचाई पे लहराता रहे सर, यही मैं शुभकामनाओं के साथ अपने को विराम देता हूँ सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र,
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद मितान जी अपना कीमती समय देने के लिए। तो श्रोता, ये थे हमारे आज के सप्ताह के श्रोता विनायक धनेश्वर जी, जो थे नासिक महाराष्ट्र से। इनसे बातचीत हमने की, इनके पसंद का गीत हमने आप तक पहुंचाया, और समय सीमा को देखते हुए कार्यक्रम को हम देते हैं यहीं पर विराम, और अगले सप्ताह एक नए श्रोता के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी पसंद का गीत और उनके बारे में। इसी बात के साथ दीजिए अनुमति अनीश श्रीवास को कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता से स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।